हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय दो श्लोक संख्या 20-25। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् म्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवीपि बस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति बर्हापीडं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकार बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं शमाल्यं रन्ध्रान् वेणुं अदरसुदया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशकीर्तकीर्ति जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम महापुराण की। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय दो, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। उद्धव जी, विदुर जी को भगवान की करुणा के विषय में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। कि जीव जैसे ही भगवान के सन्मुख आ जाता है तो उसी समय भगवान उसके जन्म जन्मांतर के अपराधों को क्षमा करके उसे स्वीकार करते हैं। जीव को बस एक कदम आगे बढ़ने की है। जब जीव एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है तो बस उस जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बाकी सारे कदम भगवान बढ़ाता है। बस जीव को आगे आना है, उसे कृष्ण को अपनाने का, कृष्ण को प्राप्त करने का केवल संकल्प ही करना है। भगवान प्राप्त नहीं किए जा सकते अपनी अपने प्रयास से, परंतु जब वो एक कदम बढ़ाता हुआ देखते हैं तो वो दूसरा उनका कदम, वो जब 10 कदम चलेंगे तो हम सोच सकते हैं कि वो भगवान जो अपने 3 पैर में पूरी पृथ्वी को नाप, पूरे त्रिलोकी को नाप सकते हैं, वो जब 10 कदम आके हमारी बाह पकड़ लेंगे तो क्या कोई दूरी रह जाएगी? नहीं। तो बहुत ही सुंदर रीति से आगे विदुर जी भगवान की करुणा के विषय में बताते हैं कि जब युद्ध स्थल में भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे थे तो कहीं पर भी भगवान की दृष्टि जाती, चाहे जिसके ऊपर भी जाती, तो उसके ऊपर कृपा हो जाती और भगवान के दर्शन करके वो जन्म जन्मांतर के समस्त कष्टों को, भौतिक जीवन को छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता। उद्धव जी कहते हैं, तथैव जान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखा रविंदम नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य तथैव जान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्णमुखा रविंदम नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूत पदमापुरस्य। शब्दार्थ देखिए, तथैव चान्ये नरलोकवीरा, तथा भी एव, तथा निश्चय ही अन्य मना दूसरे, नरलोक मानव समाज के वीरा अर्थात जो वीर हैं, योद्धा हैं, ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम, ये मना जो आहवे यानी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण मुखारविंदम अर्थात भगवान कृष्ण का मुखारविंदम कमल फूल जैसा मुखड़ा, नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामम, नेत्रै अर्थात नेत्रों से, पिबन्ता अर्थात देखते हुए, नयन अभिरामा आँखों को अतीव अच्छा लगने वाले, पार्थस्त्रपूत पदमापुरस्य, पार्थ अर्जुन के अस्त्रपूत बाणों से शुद्ध हुआ पदम अर्थात धाम आपो प्राप्त किया अस्य उनका। अनुवाद, निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में 2 उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के ये 2 प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगें, किंतु अंततः एक ही होते हैं। अब चाहे वो परित्राणाय साधु हो या विनाशाय च दुष्कृतम्, देखने में तो दो काम लगते हैं कि भाई दुष्टों का संहार करेंगे और जो भक्तजन हैं उनका उद्धार करेंगे, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये दोनों कार्य ऊपर से भिन्न लगते हैं किंतु अंततः एक ही होते हैं। वो कैसे? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमल मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाले ये शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम्। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे ना शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यत किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन धाम कहलाता है और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहाँ भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रस्तुत नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियाँ होती हैं, जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं, किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा होती है जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव से की जाती है। अत्यंत ही सुंदर प्रसंग है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। हम सब जानते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध जो है वो निर्धारित हो गया तो भगवान ने ये निश्चय किया था कि मैं युद्ध तो नहीं करूँगा, ना ही शस्त्र उठाऊँगा, लेकिन फिर भी सहायता करने का प्रण था उनका कि जो मेरे पास सहायता के लिए आएगा उसे निराश नहीं करूँगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे और कह दिया कृष्ण ने कि चुन लो, मुझको और मेरी सेना को दोनों आपस में बांट लो। अर्जुन ने कहा हे प्रभु मेरे तो बस आप हो। दुर्योधन ने कहा चलो ठीक है, सेना मैं ले लेता हूँ। संसार जानता है दुर्योधन ने भगवान की सेना, वो नारायणी सेना जो भगवान के एक आदेश से उस दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। अब ये तो निश्चित था कि जो दुर्योधन पापी के दल में होगा उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर कभी कभी मन में संदेह आता है कि भगवान ने अपनी नारायणी सेना को उस दुष्ट दुर्योधन के दल में आखिर जाने ही क्यों दिया। वो अपराधी, वो दुष्ट, उसके कुकर्मों के कारण नारायणी सेना को क्यों दंड भोगना पड़े। कहने वाले तो कह देते हैं कि भगवान ने कैसा अन्याय किया अपनी सेना के साथ कि स्वयं तो अर्जुन के साथ हो गए और अपनी नारायणी सेना उस दुष्ट दुर्योधन के साथ कर दी जो निश्चित रूप से मारी जाने वाली थी। प्रत्येक योद्धा पहले से ही मारा जाने वाला निश्चित हो गया था। लेकिन यहाँ पर भी भगवान की केवल करुणा ही दिखती है, क्योंकि यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने कहा बलि दिखता रहे, बलि सुनने में ऐसा लगे, परित्राण है साधु नाम, विनाश है जो दुष्कृतम, दो अलग अलग बात है। परंतु भगवान के हाथों जिसका विनाश होता है, भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती है, भगवान के समक्ष जिसकी मृत्यु होती है। बड़े बड़े संत, भक्त, योगी जन अपने पूरी जीवन की साधना, तपस्या और अभ्यास के बदले में बस इतना ही तो चाहते हैं कि अंत समय में भगवत स्मृति हो जाए। बस यही तो जीवन की वास्तविक सफलता है कि मृत्यु के समय कृष्ण याद आ जाए। क्योंकि भगवान ने कह दिया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव इस शरीर को त्यागता है उसी भाव को प्राप्त करता है। धन्य है वो सारी जो सैनिक जो युद्ध भूमि में दुर्योधन के पक्ष में थे, क्योंकि मृत्यु के समय अर्जुन के रथ के जो सारथी थे वो उनके दर्शन करते हुए नयनाभिरान, मतलब वो युद्ध भूमि में जहाँ कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं, वो उनके नैन जो थे, जो जितने भी सैनिक थे, वो हर क्षण यही इच्छा करते थे काश ये अर्जुन का रथ हमारे समक्ष खड़ा हो। और जब कृष्ण किसी को देखते थे उस समय, तो वो भूल जाते थे कि हम यहाँ युद्ध भूमि में आए हैं, उसी समय घायल हो जाते थे। और ये परिपूर्णता है कृष्ण की कि वो जो कृष्ण के साथ शत्रुता भी करता है, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हर जीव के हृदय में भगवत प्रेम सुषुप्त अवस्था में है, और हम जो भी साधना करते हैं, जो भी भक्ति का कार्य करते हैं और जो भी नियम हम धारण करते हैं, उसका केवल एक ही अभिप्राय है कि जो भी विधि विधान है भक्ति के, भगवान भक्ति की समुचित विधि इस प्रस्तुत नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। बस वो प्रेम जागृत हो जाए। जितना संसार अच्छा लगने लगता है कि हम संसार के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने लगते हैं, संसार को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, उससे अधिक कृष्ण प्यारा लगे। बस यहाँ तक ही सारे विधि विधानों का पालन करना है कि कृष्ण प्यारा लगने लगे, कृष्ण के प्रति जो प्रेम सुषुप्त है वो जागृत हो जाए। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने भगवत प्रेम पूरी तरह से जागृत कर दिया, आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन जाते हैं। ये वो लोग जो पूरी तरह से अपना तन मन धन प्राण हृदय सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, जिनका जीवन केवल कृष्ण की प्रसन्नता होता है, जिनको केवल कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी ना अच्छा लगता है ना सोचने में आता है, तो वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम को पहुंच को प्राप्त करते हैं। वैसे तो वैकुंठ और गोलोक दोनों ही कृष्ण के धाम है, परंतु यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि गोलोक वृंदावन धाम में वो भगवान जो है वो सहज स्नेह भाव में भगवान प्राप्त होते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण आपके ही हैं, उसके साथ आपको जैसा भी प्रेम, जिस प्रकार से उसको प्रेम करना है, जिस प्रकार से उसकी सेवा करनी है, जैसा भाव आपके अंदर है, जिस भाव से आप कृष्ण को प्रेम करना चाहते हो, वो सहज प्राप्त होते हैं। और गोलोक में कृष्ण सरल हैं और वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य के साथ की जाती है। तो जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसको भगवान स्वीकार करते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्रपूत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष उसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के लिए भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन की निजी इच्छा नहीं थी कि वो युद्ध करे, वो युद्ध केवल भगवान के लिए कर रहा था। क्योंकि जब अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, ना मुझे इस भौतिक जगत का राज्य चाहिए, ना ही मुझे त्रिलोकी का राज्य चाहिए, मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने उसे कहा तुम्हें युद्ध तो फिर भी करना ही होगा, इसलिए तुम बुद्धि योग से युद्ध करो। बुद्धि योग अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अर्जुन किसी भी शत्रु को शत्रु समझ के नहीं मार रहा था। अपोजिट दल में जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए युद्ध कर रहा था। तो भगवान की इच्छा के लिए कार्य किया जा रहा है अर्थात भगवान ही के तुल्य। तो जिस तरह से भगवान यदि किसी कवच करते हैं तो वो जैसे जिस तरह से उससे भगवत धाम प्राप्त होता है, उसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा के कारण अर्जुन कर रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ही अर्जुन किसी शत्रु के पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं अभी तो सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उद्धव जी दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं, भगवान को देखते देखते उनकी मृत्यु हो गई, और ना केवल देखते देखते परंतु वो साथ साथ में भगवान के नेत्रों की, भगवान की सुंदरता की वो ना केवल पिबंती, ना केवल उसका पान कर रहे थे परंतु उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। और जैसे जैसे उसको देखते हुए प्रशंसा करते हुए उनकी मृत्यु हुई, इससे बढ़कर और तो कोई मृत्यु हो नहीं सकती, मरना तो सबको है। तो उद्धव जी यहाँ पर शोक प्रकट कर रहे हैं कि काश मैं भी उनमें से कोई होता, मेरी भी वहाँ पर मृत्यु हो गई होती, तो आज कृष्ण के विछोह का, तिरोधान का ये शोक मुझे ना करना पड़ता। आगे उद्धव जी कहते हैं, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रतीश स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिम हरिद्भिश चरिलोकपालो किरीट कैट्येडित पादपीठ स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रतीश स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिम हरिद्भिश चिरलोकपालय किरीट कोट्येडित पादपीठ स्वयं त्व साम्यातिशयस्त्रधीश। स्वयं मन स्वयं तू, लेकिन साम्या अद्वितीय, अतिशय महत्तर, त्रदि अधीश अपना तीनों लोकों का स्वामी। तो भगवान त्रलोक्य स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्वराज्य लक्ष्म्या, स्वराज्य स्वतंत्रता अर्थात सत्ता, लक्ष्म्या संपत्ति, आप्त प्राप्त किया, समस्त काम सारी इच्छाएं, बलिम हरित फिर चरलो, बलिम अर्थात पूजा की साज सामग्री, हरत फिर यानी प्रदत्त, चिरलोकपाल सृष्टि के व्यवस्था को नित्य बनाए रखने वाले जो चिरलोकपाल हैं, किरीट कोटि पाद किरीट कोटिया अर्थात करोड़ों करोड़ों उनके मुकुट, एडती एडित पाद पीठ अर्थात प्रस्तुत किया, प्रस्तुत द्वारा उस्तुतियों द्वारा सम्मानित पाऊं। अनुवाद देखिए, भगवान कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांव का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोकों में बतलाया गया है, फिर भी वे समस्त त्रियों के स्वामी हैं। वे तीन लोकों, प्रकृति के तीन गुणों तथा तीन पुरुषों, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु तथा क्षीरो दक्षाय विष्णु के स्वामी, यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवतम है और उसमें भगवान के परम मित्र उद्धव जो कि साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, वे बता रहे हैं, स्वयं त्व साम्यातिशयस्त्रधीश, वो साक्षात अद्वितीय हैं, उनके जैसा और कोई नहीं है, असाम्य, और वो तीनों जो तीन त्र अधीशा तीन के स्वामी है। तीन का मतलब क्या है? त्रय अवयव, तीन लोक होते हैं, ऊपर के लोक, सेंटर के लोक और नीचे के लोक। तीन प्रकृति होती है, प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, तथा तीन पुरुष होते हैं, त्रयो, मतलब जो कुछ ये है, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारुणदक्षाई, इन सबके स्वामी हैं। ब्रह्मांड अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये विभिन्न रूप हैं। इनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण इन सबों के स्वामी हैं। मनु के अवतार रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि स्रोत हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 504,000 मनु होते हैं। भगवान तीन प्रधान शक्तियों, चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं और वे षडेश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के समग्र स्वामी हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो, और उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई उनकी तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वह जो भी हो तथा जहाँ भी हो, उसका यह कर्तव्य है कि पूरी तरह से उनकी शरण ग्रहण करे। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उन्हें पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो ही हर एक वस्तु के स्वामी हैं। तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने स्वामी के शरणागति स्वीकार करें, उसी से उसके जीवन का कल्याण संभव है। आगे उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी क्योंकि वही भगवान के साथ मथुरा में रहते थे और द्वारिका में, सदैव भगवान के साथ ही रहते थे और भगवान की वास्तविकता को भी जानते थे कि वो हर एक वस्तु के स्वामी हैं। इसलिए आगे कहते हैं, तत्स्य संकर्यमालं भृतान्नो विग्लापयन्त्यं यदुग्रसेनं तिष्ठन्निषणं परमेष्ठिदिष्णे न्यबोधयत्तीवनिधारयेति तत्तस्य संकर्यमालं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनं तिष्ठन्निषणं परमेष्ठिदिष्णे न्यबोधयत्तीवनिधारयेति ततस्य संकर्यमलम भृतानो। तत् इसलिए, तस्य उसकी, कैंकर्यम अर्थात सेवा, ततस्य कैंकर्यम, कैंकर्यम मतलब सेवा, अलम अर्थात निसंदेह, भ्रातृ भृतान यानी सेवकों को, नह यानी हम, विग्लापयन्त्यंग यदुग्रसेन विग्लापयन यति अर्थात पीड़ा देती है, अंग हे विदुर, यद उग्रसेनम जितनी के, उग्रसेना मतलब राजा उग्रसेन, तिष्ठन्नि शरणम, तिष्ठन मतलब बैठे हुए, निशरणम मतलब सेवा में खड़े हुए, परमेष्ठी दिशणीय राज सिंहासन पर, जब राज सिंहासन पर राजा उग्रसेन बैठे होते थे तो भगवान जो कि त्रिलोकी के नाथ हैं वो उनकी सेवा में खड़े होते थे। तो ये बात विग्लापयति अर्थात हमें बहुत दुखी करती थी। और आगे कहते हैं, निबोधयंती, वो निवेदन करते थे देव मेरे प्रभु को संबोधित करते हुए, निधारय अर्थात आप जान लें, इति इस प्रकार, मतलब वो इस तरह से बोलते थे जब कृष्ण के, प्रभु आप ये जानिए ऐसा हो रहा है, ये सेना ही है या फिर ये कार्य करना है, जब इस तरह से सेवकों की बात ही, वो त्रिलोकी के नाथ, प्रत्येक वस्तु के आदि कारण, वो जब इस तरह से व्यवहार करते थे तो मुझे बहुत दुख होता था। अनुवाद देखिए, उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे, मतलब हर बात बताते थे, आपको पता है प्रभु, आपको विदित हो, ऐसे करके बोलते थे, तो हमें कैसे दुख नहीं होगा कि वो त्रिलोकी के नाते और उनको इस तरह से सफाई पेश करनी पड़ रही है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अपने तथा कथित गुरुजनों तथा अपने पिता बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों मित्रों तथा समसामयिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं हैं, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित होते हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 9.11 में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है, अवजानंतिमा मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं ना जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टतया व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में भटकाता बनाता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं, जब भगवान धराधाम पे होते हैं तो कभी तो वो गोपियों के साथ नटखट कोई लीला करते हैं, कभी यशोदा मैया की लकुटी से भयभीत हो जाते हैं, तो कभी उग्रसेन के सामने खड़े होकर वो हर बात को स्पष्ट करके बताते हैं, उनको उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान चाहे कोई भी लीला करे, भक्तगण उन लीलाओं के ऊपर शंका करके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, परंतु भक्तजनों को पता होता है कि भगवान की लीला है और उसको देख देख कर आनंदित होते हैं। परंतु जो अभक्तगण होते हैं वो ही भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, अगर वो भगवान है तो ऐसा क्यों करता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान के प्रेम का व्यवहार है, आदान प्रदान है जो अपने भक्तों के साथ भगवान करते हैं, और ये केवल भक्त जन ही इसको समझ पाते हैं, हर किसी के समझ में नहीं आता। और इसके उपरांत बहुत ही मनोहर बहुत ही मधुर श्लोक है जो कि अक्सर श्रील प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर्स में बताते हैं, और दूसरा के बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवान की करुणा के ऊपर। और यह वह श्लोक है जब सुखदेव गोस्वामी अपने पिताजी का घर त्याग कर वन में ही रहना पसंद करते थे, वो वन में ही रहते थे, और वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक सिखाए थे कि तुम वन में जाकर इन श्लोकों को रटो, उसी में से एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान किस प्रकार अपने शत्रु पर भी चरम कृपा करते हैं उसके का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उद्धव जी कहते हैं, अहो बकेयम् स्तनकालकूटम्
जिघांसयापा ययदाप्यसात्वी लेभे गतिं धा युचितां ततोऽन्यो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदाप्यसात्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम।
शब्दार्थ अहो बकीयं स्तन कालकूटम। अहो मतलब ओह, बकी यानी बकासुर की बहन, असुरानी, असुरानी पूतना, सॉरी पूतना जो कि बकासुर की बहन है, यम जिसको स्तन कालकूटम अपने स्तन पर कालकूट अर्थात घातक विष लगा के जिंघासयाप, जिंघास मतलब ईर्ष्यावश, भगवान से कितनी ईर्ष्या कर रही थी वो, भगवान अभी तक 6 दिन का है, उसको मारने के लिए वो जहर लगाकर अपने स्तनों को आई थी। अपाययत यानी पिलाया, अपि यद्यपि साध्वी अर्थात कृतज्ञ, लेभे गतिम धात्री उच्यता, लेभे मतलब प्राप्त किया, गतिम गंतव्य, धात्री उच्यतम धाई के उपयुक्त, जो धाई या माता को जो गति प्राप्त होती है, ततः जिसके आगे अन्यम दूसरा, किम अन्य और कोई दूसरा इनसे बढ़कर कोई दयालु हो सकता है, किम वा दयालुम, दयालु या कृपालु शरणम प्रजेना, तो ऐसे ही भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए कि हम चाहे हमारे अंदर कितने ही दोष हों, हमारे हृदय में कितना ही जहर बढ़ा हुआ हो, लेकिन ये भगवान शुद्ध करके वो अपने धाम में जगा दे देते हैं। इतनी कोई कृपा करता है, कम वा दयालु, ऐसा कोई कृपालु हो सकता है? इसलिए जीव को यदि अपना कल्याण करना है तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण करे, ग्रहण करे, क्योंकि हमारे अपराध इतने गहरे हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इन अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो जहर लगाकर स्तन को जब पिलाने के लिए आई उसे भी माता की गति दे देते हैं। क्या ऐसा कोई और कृपालु हो सकता है? किम वा दयालु, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्या करो, शरणम व्रजेम, उन्हीं की शरण स्वीकार करो। अनुवाद, ओह बला में उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, यानी कि जो खुद अच्छा होता है तो वो हमेशा सब में पॉजिटिव देखता है। जिस तरह विष के आघार से अमृत ले लिया जाता है, कृष्ण को बाल्यकाल में पुतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं, भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करे, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान चाहे किसी भी स्थिति, भगवान पूर्ण है, वो एक दिन का है जब, तब भी पूर्ण है। वो समस्त असुरों का वध उसी क्षण कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि भगवान अभी छोटे हैं तो उनको मथुरा से जाना पड़ेगा ताकि वो अभी तो ना कंस को नहीं मार सकते हैं, थोड़े बड़े होंगे फिर। नहीं, ये भगवान की लीला थी। अगर वो वृंदावन ना जाते तो हम वृंदावन की लीलाओं से आनंदित कैसे होते। वृंदावन की भगवान की बाल लीलाएँ, वो माखन चोरी करना, वो दामोदर लीला के द्वारा नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करना, वो क्षीर हरण करना, वो रास लीला, ये सब लीलाएं तो भगवान को करनी थी ना हमारे उद्धार के लिए। तो भगवान तो पूर्ण है, वो कोई भी कार्य, लेकिन आप पोतना राक्षसी भला ये कैसे समझे कि ये 6 दिन का छोटा सा बच्चा वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मुझे मार सकता है। तो वो तो आई थी भगवान को मारने के लिए घातक विष लगा के। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया। ये भगवान का गुण है कि वो हमारे जो खामियां हैं उसमें भी खूबी को ढूंढते हैं, है ना। भगवान हमारे अपराधों में भी कोई ना कोई पुण्य कार्य, कोई ना कोई अच्छी बात ढूंढ ही लेते हैं। भगवान को कृपा करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए, वो कृपा करना ही जानते हैं। याद रखिए भक्तों, ये भगवान का स्वभाव है। वो और कोई भी अपने स्वभाव से हटकर कार्य नहीं करता। भगवान को एक ही काम आता है, कृपा करना, कृपा करना और कृपा करना। हम चाहे कितने ही निकृष्ट हो जाएं, चाहे कितने ही अपराधी हो जाएं, चाहे हम कुछ भी, साक्षात भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। सोच सकते हैं, कोई हमें अगर कोई मारने के लिए आए, क्या उसके लिए हमारे हृदय में जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? लेकिन हम में और कृष्ण में बहुत अंतर है। हम मेले तुम उजल करता, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के दाता, तुम सर्व कला के दाता माधव, हम ऐसे तू ऐसा। तो ये भगवान का स्वभाव है कि उनको कृपा करना ही आता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसके दूषित विचार को नहीं बल्कि पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपने स्तन पीने दिया था। स्वांग करते हुए, वो तो नाटक करके माँ बन के आई थी, है ना। माँ जैसा स्वांग किया था, फिर भी भगवान ने उसको स्वीकार किया। हमसे भी नहीं होती ना भक्ति, नहीं होता भगवान के साथ प्रेम। केवल स्वांग ही रच लें, केवल भक्त बनने का नाटक ही कर लें, माला उठाएं, नाम जप करने का प्रयास करें, भगवान उसी से खुश हो जाएंगे कि हम सुबह को उठने का प्रयास करें, आरती करने का प्रयास करें, जैसे भक्त करते हैं उनकी नकल भी करना शुरू कर दें, भक्तों के जैसा कीर्तन में डांस करना शुरू कर दें। वो शायद ना जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ना जाने कब कोई हमारी भी बात उन्हें अच्छी लगे और वो हमारे अपराधों को ना देखकर उसी नाम संकीर्तन के द्वारा, उसी तिलक लगा के जाए, या फिर माला झोली को कंधे पे लगा दे, या फिर किसी तरह से भगवान को तुलसी दल अर्पण करें। यो स्वांग करते करते एक दिन कब परिवर्तित हो जाएगा हृदय, पता नहीं चलेगा। और ना भी हो, भगवान तो इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो वो पूतना के इस मात्र भाव को, क्योंकि उसने स्नेहल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपने स्तन पीने दिया था, भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है, अतएव भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। तो भगवान छोटे से छोटी सेवा को भी स्वीकार करते हैं, वो कभी निग्लेक्ट नहीं करते, कभी नज़रअंदाज नहीं करते, कुछ भी करें भगवान के लिए तो भी भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्या दिया था सुदामा ने, क्या वो थोड़े से पॉप्ड राइस, थोड़े से तंदूर ही तो लेके आया था, क्या दिया था विदुर की पत्नी ने, केले के छिलके खिलाए उससे भी स्वीकार कर दिया। वो शबरी जो कि शूद्र थी और वो भीलनी वो खट्टे बेर को चक चक कर झूठे बेर उसको खिला रही थी, उससे भी प्रसन्न हो गए। तो कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास समृद्धि नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान था ध्रुव के पास, छोटा सा बच्चा था, कोई ये गजेंद्र जिन्होंने एक पुकार, जिनकी एक पुकार पर वैकुंठ से दौड़े दौड़े आ रहे थे, क्या वो किसी गुरुकुल में पढ़ने गया था? क्या क्या शबरी के पास कोई इतना बड़ा कुल था? क्या सुदामा बहुत धनी था? कोई योग्यता नहीं देखी और ना ही कभी देखेगा, बस उसे अपना मानना है, वो मेरा है और उसके लिए कुछ भी करना, वो छोटी सी सेवा को भी स्वीकार करते हैं। उद्धव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो भगवान के साथ शत्रु करते हैं कंस, रावण, हिरण्यकशिपु और जो भी भगवान के शत्रु हैं ना, वो तो भक्तों से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि भक्त तो हैं थोड़ी देर के लिए, उनको संसार हम देखते हैं, हम कहलाते हैं भक्त, और कितना समय सांसारिक कार्यों में जाता है, कितना समय हम भगवान को देते हैं। परंतु ये जो भगवान के साथ शत्रुता करते थे, उनको उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय केवल कृष्ण याद आता था, केवल कृष्ण का उनका ध्यान पूरा कृष्ण में लगा रहता था, भले ही वो शत्रु भाव से करते थे लेकिन ध्यान तो भगवान में लगता था ना, सोचते तो केवल भगवान के विषय में थे। तो इसलिए उद्धव जी कहते हैं, मन्ये सुरान भागव तांस्त्रयधीश, मन्ये सुरान भागव तांस्त्यधीशे सौरंभ मार्गा भिनिवेष्ट चित्तान, ये संयुगे च क्षताक्षपुत्रम् अंसे सुनाभा युदमापतन्तम्। मन्ये सुरान् भागवतांस्त्रयधीशे सौरम्भमार्गा विनिवेष्टचित्तान्, ये संयुगे च क्षतताक्षपुत्रम् अंसे सुनाभा युधमापतन्तम्। शब्दार्थ, मन्ये असुरान, मन्ये मतलब मैं सोचता हूँ, असुरान यानी असुरों को, भागवतान महान भक्तों को, त्रधीशे तीन के स्वामी को, सौरंभ अर्थात शत्रुता मार्ग से होकर, अभिनिविष्ट चित्तान विचारों में मग्न, ये संयुगे चक्षत ये जो संयुगे युद्ध भूमि में, अचक्षत अर्थात देख सका, ताक्ष्य पुत्रम भगवान के वाहन गरुड़ को, अंसे कंधे पर, सुनाभ चक्र आयुधम अर्थात हथियार धारण करने वाला, आपतंतम अर्थात सामने आता हुआ। अनुवाद, उद्धव जी कहते मैं उन असुरों को जो कि भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को तार्क्ष्य यानी कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठा तथा अपने हाथों में चक्रायुध लिए देख सकते थे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत धाम भगवत भक्त होने के कारण नहीं, अपितु भगवान की अहितु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ ले लेता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले किसी भी भाव से वो भगवान के निकट आ जाता है तो मोक्ष का अधिकारी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो ठीक है मोक्ष तो मिलता है तो हम भी आज से भगवान को शत्रुता करना शुरू कर दें। नहीं, भगवान के साथ जो प्रेम करेंगे उन्हें तो भगवान अपने गौलोक वृंदावन धाम में लेके जाएगा, जहाँ पर वे सदैव भगवान के साथ प्रेम लीला का स्वादन कर सकते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति तो आत्महत्या के बराबर है, जिसमें आपका अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो भगवान जानते हैं कि ये असुर जितने समय तक संसार में रहेंगे उतने समय तक वे संसार को पीड़ा देने का कार्य करेंगे। इसलिए भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि असुरों का यह मोक्ष भगवत भक्ति होने पर के कारण नहीं, अपितु भगवान की अहितु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विक्षोभ भावना के कारण उस तरह से सोच रहे हैं। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष ना देख सकें, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिलता है। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों की उपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहाँ वे भगवान के साथ नित्य आनंदमयी जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है, उनकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनके कोई शरीर नहीं होता, अशरीर, और जो सूर्य की किरणों के अरणों में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की उपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जा सकती प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी भगवान के विरह को याद करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए कहते हैं कि उन भक्तों से जो भगवान से बिछड़ कर जी रहे हैं, तो वो अभक्त जो भगवान से शत्रुता रखते थे और भगवान के हाथों मारे गए, वो अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पूरा जीवन वो भगवान को याद करते रहे और अंतिम समय में भगवान के हाथों से या भगवान के सामने उनकी मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो वो केवल भाव में कह रहे हैं, परंतु भगवान के ऊपर जो भगवान की अनुकंपा है उसकी बराबरी उस ब्रह्म ज्योति में समाने से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो असुरों को और जो निराकार व्यक्ति होते हैं उनको प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के भक्तों को तो भगवत धाम में भगवान के सानिध्य की प्राप्ति होती है, तो उसका तो उसके साथ कोई मेल नहीं है। उसके उपरांत उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, वसुदेवस्य देवक्याम जातो भूषेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवान श्यामजेनाभियाचितः वसुदेवस्य देवक्याम जातो भूषेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवान श्यामजेनाभियाचितः। वसुदेव अर्थात वसुदेव की पत्नी देवक्याम देवकी के गर्भ में जात भोजेंद्र, जात मतलब उत्पन्न हुए, भोज इंद्र भोजों के राजा, बंधने अर्थात बंदी गृह में, चिकीर्षु करने के लिए भगवान अस्य, भगवान अस्य यानी इस पृथ्वी पर, शमजेना भी याचिता शम कल्याण, अजेन ब्रह्म द्वारा, अभियाचित याचना किए जाने पर, जब ब्रह्मा जी ने याचना की थी तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहाँ पर जन्म लेना स्वीकार किया जो कि भोजेंद्र हैं। अनुवाद देखिए, पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से प्रत्यक्ष रूप से पूछा था, अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्लेख है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान जब देखते हैं कि उनके भक्तों के ऊपर कष्ट है, तो जिस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान ने देवकी और वसुदेव के यहाँ पर पुत्र बनकर आने का निश्चय किया। शिला प्रभुपाद जी एक और भी मुख्य बात यहाँ पर बता रहे कि भगवान का आना और जाना समान है, ऑस्पिशियस है, परंतु भक्तों को है ना भगवान के आने की बात तो अच्छी लगती है, परंतु भगवान के जाने की बात पसंद नहीं लगती है। इसलिए उद्धव जी से विदुर जी ने भगवान ने जन्म कब लिया, कैसे लिया, उसके विषय में नहीं पूछा था। भगवान सुरक्षित हैं, भगवान अपने द्वारिका में हैं कुछ इस तरह से कि क्या भगवान अब इस धरती पर हैं, परंतु वो भगवान के जाने की बात कहना ही नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो भगवान के आने की बात सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी के अनुरोध पर देवकी और वसुदेव के यहाँ पर कारागृह में उत्पन्न हुए। और आगे कहते हैं, ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद्विभ्यता एकादश समस्तत्र गूढार्षी सबलो वसत् ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद्विभ्यता एकादश समस्तत्र
गूढार्ची सबलो वसत ततो नंद व्रजमति। ततो जन्म लेने के बाद उसके तत्पश्चात नंद व्रजम नंद महाराज के चारा ग्रहों में इतः पाले पोषे जाकर पित्रा अपने पिता द्वारा कंसात कंस से विभिव्यता भयभीत होकर एकादश ग्यारह समा वर्ष तत्र वहां गूढ़ार्च्य अर्थात प्रचन्न अग्नि सह बलराम सहित अवसत रहे। अनुवाद तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्होंने नंद महाराज के चारागाहों में ले आए और जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकट होते हुए भी प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से यह सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चारागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भयभीत नहीं थे, लेकिन अपने भक्त नंद महाराज को स्नेह देने के लिए वसुदेव को और देवकी को निर्भयित करने के लिए उन्होंने नंद महाराज के यहाँ जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना ही था। इसी सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्होंने मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहां 11 वर्ष तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारिणी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है कि छोटा सा बच्चा है, कौन इसकी सुरक्षा करेगा, यहाँ पर कंस इसको कहीं हानि न पहुँचाए। और भगवान को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा कि कोई उनको ईश्वर बनाकर उनकी पूजा आराधना करे वो और उनको भगवान समझे, उससे ज़्यादा यो यहाँ पर इसीलिए तो आए थे। भगवान को क्या पूजा अर्चना की कमी थी गोलोक वृंदावन धाम में, लेकिन वो भगवान यहाँ इस भौतिक जगत में अपने भक्तों का प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए थे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे, वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की रेख रेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, और अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। भले भय नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को बहुत सारी लीलाएं करनी थी, इसलिए जब वे कंस के कारागृह में उत्पन्न हुए थे, तो नंद बाबा के पास वसुदेव उनको सुरक्षित रख के आए थे कि मेरे बच्चे को वहां पर बहुत संकट है, तो आप इनकी सुरक्षा कीजिए। तो यहाँ भगवान की अद्भुत लीलाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं। ये सब लीलाएं जो है वो 10वें स्कंद में विस्तार से आएंगी, लेकिन भागवत का मतलब ही ये है कि क्षण क्षण पर कृष्ण की अनुस्मृति होनी चाहिए। बस इसी तरह से भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं को श्रवण करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब श्रवण करने की करते करते भगवान से प्रेम हो जाएगा, और इन्हीं भक्तों की तरह हम भी भगवान को अपना समझने लगेंगे, हम भी भगवान के साथ उसी तरह से प्रेम करेंगे। तो हम इसी तरह से भगवान की इन कथाओं को श्रवण करते रहेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।